पृष्ठ संख्या 249, अध्याय 13, गद्य के नए रूप। कहा जा सकता है कि यह गद्य का युग है, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन तथा सत्य के अन्वेषण के लिए इसी को साधन बनाया जा सकता है। हम देख चुके हैं कि आधुनिक काल में गद्य का असाधारण विकास हुआ और उसके अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाश में आईं। गत अध्याय में कुछ उपन्यासकारों, कथाकारों, आलोचकों, जीवनीकारों, निबंधकारों, अनुसंधान के पंडितों की चर्चा की जा चुकी है। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में गद्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया और विशेष रूप में कहानी, उपन्यास, आलोचना, शोध, प्रबंधों और व्यंग्य साहित्य का अनुपम भंडार एकत्र हो गया। उर्दू कथा साहित्य एक दृष्टि से बहुत प्रचुर रह चुका था। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब नई चेतना विकसित हो रही थी, उसी समय लखनऊ, देहली और रामपुर में बड़ी बड़ी काल्पनिक दास्तानें लिखी गईं जो कई कई हजार पृष्ठों तक पहुंचती थीं। फिर यथार्थ पर आधारित उपन्यास लिखे जाने लगे। कहानियों का विकास कुछ समय रुक के हुआ, किंतु थोड़े ही दिनों में कहानियाँ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावशाली साधन बन गईं। इनमें कुछ का वर्णन पिछले अध्यायों में हो चुका है, किंतु वास्तव में सामान्य जीवन के संपर्क में लाने का काम प्रेमचंद ने किया। इसीलिए प्रेमचंद नई कहानी कला के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। उन्होंने भारतीय जीवन के बहुमुखी संघर्ष को अपनी रचनाओं में ऐसे दिव्य रूप में प्रस्तुत किया कि कहानी समाज का जीता जागता दर्पण बन गई और उनके बाद के लेखकों के सामने नई दिशाएं स्पष्ट हो गईं। प्रेमचंद से उर्दू तथा हिंदी जानने वाले समान रूप से परिचित हैं, इसलिए उनके संबंध में यहाँ विस्तार पूर्वक लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद का घर का नाम धनपत राय था। वह 1880 ईस्वी में बनारस के निकट एक गांव लमही पांडेपुर में पैदा हुए। उनका परिवार कायस्थों का साधारण परिवार था, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक से ना हो सकी। उन्होंने अपनी लगन और घोर परिश्रम द्वारा उर्दू, फारसी और दूसरे विषयों का अध्ययन करके इंट्रेंस पास कर लिया और शिक्षा विभाग में एक साधारण सी नौकरी कर ली। धीरे धीरे बीए तक की उपाधि प्राप्त की और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए, परंतु स्वास्थ्य की खराबी की वजह से फिर स्कूल के अध्यापक होकर गोरखपुर में रहने लगे। 1921 में जब स्वतंत्रता आंदोलन अधिक पृष्ठ संख्या 250 विकसित हुआ, तो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया ताकि स्वतंत्र रहकर देश और राष्ट्र की सेवा कर सकें। अपने स्वास्थ्य के खराब होने और जीविका के लिए परिश्रम करते रहने के बावजूद उनका समस्त जीवन एक लेखक का जीवन रहा। ऐसा जान पड़ता है कि प्रेमचंद ने 17-18 वर्ष की आयु से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था, परंतु उनको ख्याति 1907 ईस्वी के बाद प्राप्त हुई, जब उन्होंने देश प्रेम से प्रेरित होकर कहानियाँ लिखना शुरू की। पहले नवाब राय के नाम से लिखा, परंतु जब अंग्रेज सरकार पीछे पड़ गई और यह नाम छिप न सका, तो 1910 ईस्वी में प्रेमचंद के छद्म नाम से साहित्य क्षेत्र में उतर आए। इसी नाम ने उन्हें अमर बनाया। इसके पूर्व उनकी कहानियों का पहला संग्रह शोजे वतन के नाम से छप चुका था। उसके प्रकाशन पर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा क्रोध प्रकट किया गया और उन्हें कड़ी चेतावनी देकर उनकी आँखों के सामने ही इस संग्रह को जला दिया गया। अनेक पत्रिकाओं में काम करने के पश्चात उन्होंने हंस के नाम से स्वयं एक प्रगतिशील पत्रिका निकाली और अपना एक प्रेस भी स्थापित कर लिया। आर्थिक संकट दूर करने के लिए कुछ दिन फिल्मी संसार की हवा भी खाई, परंतु उनका जीवन कभी बहुत सुख से नहीं बीता। यहाँ तक कि सन 1936 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद के संबंध में उर्दू में कम और हिंदी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस स्थान पर केवल उनकी कहानियों की कुछ विशेषताओं की ओर संकेत किया जाएगा, जिनके बहुत से संग्रह बारंबार प्रकाशित हो चुके हैं। जिस लेखक के साहित्यिक जीवन का आरंभ इस प्रकार हो कि उसका पहला संग्रह ही विद्रोह अनुभूति के आरोप में जला दिया जाए, उसके संबंध में यह समझना कुछ कठिन नहीं रह जाता कि वह उन परिस्थितियों को बदलना चाहता था जो निम्न वर्ग के हित के विपरीत थीं और जो स्वाधीनता के बिना बदली भी नहीं जा सकती थीं। गांव के एक दीन परिवार में जन्म लेकर और परिश्रम का जीवन बिताकर प्रेमचंद ने साहित्य में उन साधारण लोगों को जगह दी जिन्हें अच्छे अच्छे लेखक साहित्य का पात्र नहीं बना सके। किसानों, जमींदारों, छोटे छोटे उद्योग धंधा करने वालों, अछूतों, धर्मरक्षकों, बने हुए नेताओं, सभी से भली भांति परिचित थे और उनकी विवेचना से उन्होंने अपने अनुभवों की झोली भर ली थी। इन साधारण लोगों को वह अपनी कहानियों में इस प्रकार लाते थे जैसे वह जीवन क्षेत्र में चलते फिरते थे। प्रेमचंद जो कुछ लिखते थे उसका एक उद्देश्य होता था और वह इस बात को कला निर्माण के विरुद्ध भी नहीं समझते थे। अपने सभी लेखों में उन्होंने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करके सुधार और परिवर्तन का मार्ग दिखलाने की चेष्टा भी की है। इसलिए कला की दृष्टि से वह यथार्थवादियों में बड़ा उच्च स्थान रखते हैं। जीवन के जैसे सुंदर और सच्चे चित्र मनोभावनाओं का आंतरिक संघर्ष और उनके फलस्वरूप जनसाधारण के हार्दिक रहस्य जिस प्रकार उनके यहाँ खुलते हैं दूसरे लेखकों के यहाँ पृष्ठ संख्या 251 इस सफलता के साथ नहीं मिलते। वह अपनी रचनाओं में सदैव स्वतंत्रता, न्याय और प्रगति का साथ देते हैं। इसीलिए प्रगतिशील लेखक उन्हें एक महान कलाकार ही नहीं मानते वरन अपना नेता भी समझते हैं। यदि उनके लेखों का अध्ययन ऐतिहासिक रूप से किया जाए तो अनुभव होगा कि वह सुधारवाद से क्रांति की ओर और गांधीवाद की आदर्शता से यथार्थवाद की ओर बड़े वेग से बढ़ रहे थे। और जो कोई उनकी अंतिम रचनाएं पढ़ेगा उसे यह मानने में संकोच नहीं होगा कि वह प्रगतिशील शक्तियों का साथ दे रहे थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके विचारों में त्रुटियां भी थीं जो समकालीन चेतना का अंश बनी हुई थीं। इसलिए कहीं कहीं एक प्रकार की आदर्शवादिता उनकी वास्तविकता को दबा लेती थी। प्रेमचंद ने आरंभ में जो कुछ लिखा उर्दू ही में लिखा, परंतु बाद में जब हिंदी की ओर उन्मुख हुए तो भी अंत तक उर्दू में ही रचनाएं करते रहे। उनकी अनेक महत्वपूर्ण कृतियां सर्वप्रथम उर्दू में ही लिखी गईं और उनका प्रकाशन भी उर्दू में ही हुआ। प्रेमचंद की भाषा इतनी सुंदर, सरल और भावपूर्ण होती थी कि उर्दू के सभी आलोचकों ने उसे सराहा है। वह शब्दों के उचित प्रयोग से ऐसा वातावरण तैयार कर लेते थे जो कहानी के प्रभाव को बहुत बढ़ा देता था। भारत की आत्मा, ग्राम्य जीवन के जैसे सुंदर चित्र उन्होंने खींचे हैं उसकी तुलना किसी और लेखक से नहीं की जा सकती। उर्दू में उनके जो संग्रह छपे उनके नाम हैं सोजी वतन, प्रेम 25, प्रेम 32, प्रेम 40, वारदात, यादे राह, ख्वाबो ख्याल, खाके परवाना, आखिरी तोहफा, देहात के अफसाने और दूध की कीमत। उनकी कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो अभी तक उर्दू के किसी भी संग्रह में सम्मिलित नहीं हुई हैं। प्रेमचंद ने उर्दू साहित्य में साधारण जनजीवन के चित्रण की जो परंपरा चलाई थी वह थोड़े ही समय में बड़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई और वह सभी लेखक जो ग्राम्य जीवन से परिचित थे उसी आधार पर चलने लगे। सुदर्शन, आजम करेवी, अली अब्बास हुसैनी, उपेंद्र नाथ अश्क इत्यादि पर उनका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इनमें से हर एक ने अपने लिए अलग-अलग मार्ग बना लिए, परंतु इनको प्रेरणा प्रेमचंद ही से मिली। अली अब्बास हुसैनी जन्म 1897 ईस्वी गाजीपुर के रहने वाले थे और सन 1954 तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से संबद्ध थे। उन्होंने लगभग 1919 ईस्वी में लिखना आरंभ किया और उनकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। नाटक, उपन्यास और आलोचना में भी उनका महत्व है, परंतु उनका विशेष क्रिया क्षेत्र कहानियाँ ही हैं। उनकी भाषा सरल, मीठी और प्रवाहपूर्ण है। उनको हार्दिक और भावपूर्ण पात्रों के चित्रण में विशेष निपुणता प्राप्त है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में रक्त फीके, तन्हाई, बासी फूल, ICS, कुछ हंसी नहीं है, मेला घूमनी और हमारा गांव बहुत लोकप्रिय हैं। उनके उपन्यासों में शायद की बहार आई, जो हिंदी में पृष्ठ संख्या 252 कोमल नगरी के नाम से छपा, बहुत मनोरंजक समझा जाता है। उन्होंने उर्दू उपन्यास का एक आलोचनात्मक इतिहास भी लिखा है, जिसका नाम उर्दू नावल की तारीख और तनकीद है। हुसैनी की प्रगतिशीलता, उनके मानव प्रेम और जीवन के प्रति उनके उदार भावनाओं से उत्पन्न होती है। आरंभ में आदर्शवादी जीवन सुधार पर निर्धारित कहानियाँ लिखते थे। धीरे धीरे राष्ट्रीयता और जनसाधारण की आर्थिक दुर्दशा उनकी कहानियों में जगह पाने लगी। उनकी चेतना प्रेमचंद की भांति राजनीतिक नहीं है, फिर भी वह अपनी सुंदर शैली और मधुर शब्दावली के कारण बहुत बड़े कहानीकार समझे जाते हैं। इस पीढ़ी के दूसरे लिखने वालों में आजम करेवी, मन्नू गोरखपुरी, ला अहमद अकबराबादी इत्यादि भी प्रसिद्ध हैं, परंतु इस समय इनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष के प्रगतिशील लेखकों ने 1936 ईस्वी में अपनी संस्था बनाई, परंतु उससे कुछ समय पहले ही राजनीतिक जागृति के बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय विचारों के फैलने के कारण कई नवयुवकों ने साहित्य में भी चेतनापूर्वक क्रांति पैदा करने के विचार प्रकट किए थे। अतएव सैयद सज्जाद जहीर, रशीद जहां, अहमद अली और महमूदुज जफर ने अपनी कुछ कहानियों का एक संग्रह अंगारे के नाम से 1933 में लखनऊ से प्रकाशित कराया, जो बम के गोले के समान भारतीय समाज पर फटा और लोग तिलमिला उठे। सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु उसके प्रकाशित करने का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। उसमें असंतुलित और भावुक ढंग से धर्म, रीति रिवाज, नैतिक आदर्शों और यौवन संबंधी विचारों पर खुलकर चोट की गई थी। इसकी शैली भी नई थी, जिस पर यूरोपीय साहित्य और विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख पड़ता था। कला की दृष्टि से इन कहानियों में कई प्रकार की त्रुटियां थीं, क्योंकि इनमें समस्याओं के समझने के बदले उन त्रुटियों की हंसी उड़ाई गई थी जो ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से उत्पन्न हुई थीं। परंतु इसका प्रभाव यह पड़ा कि नए लेखकों ने उन कहानियों की निर्भीकता और वास्तविकता को अपनाकर जीवन के मर्मों को खोलना आरंभ किया और समस्याओं को उस पृष्ठभूमि में देखा जिन्हें राजनीतिक दासता और आर्थिक दुर्दशा ने जन्म दिया था। इन लेखकों में से कुछ समय पहले तक अहमद अली को एक ऊंचा स्थान प्राप्त था। वह अंग्रेजी भाषा के एक अच्छे जानकार और लेखक हैं। उनकी जन्मभूमि दिल्ली है और वहाँ की बोलचाल की भाषा का प्रयोग वह बड़ी सुंदरता से करते हैं। अब वह पाकिस्तान में हैं और बहुत कम लिखते हैं। उनके तीन संग्रह शोले, हमारी गली और कैद खाना प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी रचनाओं के विषय वस्तु सामाजिक और मानसिक होते हैं और बहुधा प्रतीकों से काम लेते हैं। उन्होंने कभी कभी यूरोप के प्रतीकवादियों का अनुसरण भी किया है। कला की दृष्टि से एक सफल लेखक हैं, पर विचारधारा की दृष्टि से कभी कभी अस्पष्टता की ओर बहक जाते हैं।